رب کو حق ہے مہد کے باپ سے ورثہ لینے کا, جیسے حد کا برتھ رائٹ ملتا ہے ویسے یہ سر ہے بےحد کا. شو بابا کو تم سے شو بابا سے تم کو سارے وشو کا راج ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے. کیا شو بابا سے کوئی گجرات جون کی راجائی نہیں ملتی ہے؟ بچوں کے پرتی روحانی باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں. یہی واقعہ بار بار مرلیوں میں پہلے کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ جو آتم کی استھتی میں نہیں ہے وہ بھی آتم کی استھتی میں استھت ہو جائیں. سمجھاتے ان کو ہیں جو بے سمجھ ہیں. اسکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں کیونکہ بچے بے سمجھ ہیں. بچے پڑھائی سے سمجھ جاتے ہیں. تم بچے بھی پڑھائی سے سمجھ جاتے ہو؟ ہم کو پڑھانے والا کون ہے؟ یہ بات تو کبھی بھی بھولو نہیں. پڑھانے والا ٹیچر ہے سپریم باپ. جسے اوپر کوئی باپ ہوتا نہیں تو ان کی مت پر چلنا ہے. نیکسٹ سپریم باپ کون ہوا؟ پرجا پتا. شریشٹھ بننا ہے شریشٹھ سے شریشٹھ ہوتے ہیں سوریہ ونشی. تم بچے جانتے ہو ہم کو ایسا بننا ہے. کیسا؟ شریشٹھ سے شریشٹھ سوریہ ونشی. بلک چندرونسی بھی شریشٹھ ہیں پرنتو یہ تو ہے شریشٹھ سے شریشٹھ. تم یہاں آئے ہو شریشٹھ سے شریشٹھ بننے. ایسا اسکول 5000 ورش کے بعد ہی کھلتا ہے. یہاں تم سمجھ کر بیٹھے ہو. یہ سچ مچ ستیہ کا سنگ ہے. اور ستیہ ہے اونچ سے اونچ. ان کا تم کو سنگ ہے. وہ بیٹھ کر ستیہ کا شریشٹھ دیوتا بناتے. شریشٹھ سے شریشٹھ دیوتا ارتھات پھول بنا دے. تم کانٹے سے پھول بنتے جاتے ہو. پھول فوراً بن جاتے ہیں, کوئی کو ٹائم لگتا ہے. بچے جانتے ہیں یہ ہے سنگم یوگ. تو بھی صرف بچے ہی جانتے ہیں. نشچے ہے کہ یہ پرشوتم بننے کا یوگ ہے. اور پرشوتم بھی کون سا؟ اونچ سے اونچ آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم کے جو مہاراجا مہارانی ہیں وہ بننے کے لیے تم یہاں آئے ہو. تم سمجھتے ہو ہم آئے ہیں بےحد کے باپ سے بےحد کا ستیہ کی سکھ لینے. حد کی جو بھی باتیں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. एक हद का सुख होता है और बेहद का सुख होता है। हद का सुख माने हद की दुनिया के साधनों का सुख और बेहद का सुख अतिंद्रिय सुख, जिसमें इंद्रियों का भी आधार लिया लिया न लिया कोई जरूरी नहीं है। इंद्रियों की पकड़ से वो सुख बाहर है। तो जो भी हद की बातें वो सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप, हद के भाई, चाचे काके मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, वो सब खलास हो जाना। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको तो बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाल मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिए, माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महलमाणियां आदि हैं वो तो समझते हैं अभी हमारे लिए यही सतयुग है। ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है। अलग अलग प्रकार की धारणाएं नहीं होती, वही नई दुनिया होती है जहां एक धर्म और एक राज्य। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ, तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो, ये समझदारी हुई। नीचे उतरना समझदारी हुई क्या? नहीं, पहाड़ पर जब चढ़ते हैं जोर से तूफान आता है तो शेल्टर लेने के लिए कुछ नीचे भी उतरना पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हिम्मत हार गया, हारने वालों की लिस्ट में आ गया। नहीं, थोड़े समय के बाद फिर चढ़ना है। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन के हारे हार हैं। अगर मन बुद्धि से हार गए तो हार गए, बाकी ऐसे नहीं कि माया कोई को पछाड़ती नहीं है। माया भल पछाड़ती है, लेकिन जैसे साइकिल से गिरने वाला फट से उठ के खड़ा हो जाता है तो क्या हिम्मत हार गया? नहीं, हिम्मत बच्चे मदद बाप। सचिव में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझदार बने। फिर बाप आकर के समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे, गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन सारा आकाश सब के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप तो बहुत बहुत देते हैं, इससे जाती झोली कोई भर नहीं सकता। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, आधा कल्प कौन सा स्वरूप है जिसको याद किया है? गणेश को तो आधा कल्प नहीं याद किया है, गणेश हनुमान की तो पूजा द्वापर के अंत से होती है, देवियों की भी पूजा द्वापर के अंत से शुरू होती है, मनुष्य गुरुओं की भी पूजा तभी शुरू होती है। उनके लिए तो नहीं कहेंगे आधा कल्प से याद किया, तो किसको आधा कल्प से याद किया? शिवलिंग के स्वरूप को। जिस लिंग में लिंग के साथ बिंदु भी जुड़ा हुआ था, सोमनाथ मंदिर में हीरे की ज्योति भी बीच में जड़ी हुई, तो सिर्फ लिंग ही नहीं, लिंग के साथ बिंदु भी, तो ये प्रवृत्ति की याद हो गई। बिंदु है सुप्रीम आत्मा की यादगार, और लिंग है साकार शरीर की यादगार। साकार शरीर होते हुए भी निराकार स्टेज वाला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान का भान होता नहीं, तो चित्रकार कैसे दिखाए? इसलिए लिंग दिखा दिया है, नहीं तो शिव बाप कोई इतना बड़ा नहीं होता, लिंग इतना बड़ा। शिव कितना है? ज्योति बिंदु ही है, सभी आत्माएं बिंदु बिंदु है, लेकिन जब शरीर धारण करती है तो उनको चैतन्य कहा जाता है। तो हमको ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया, दुख में स्मरण करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर स्मरण करने की दरकार नहीं, दुख में साथ स्मरण करते हाय राम। जब दुख की बात मुख से निकलती है या कोई दुखी होते हैं तो अक्सर क्या बोलते हैं? हाय राम, हाय कृष्ण बोलता है कोई? हाय शिव, हाय ब्रह्मा नहीं, हाय नारायण क्या बोलते हैं? हाय राम। मन कि दुख के समय में जबकि दुनिया का विनाश होगा, ना ना चा चा का का ताऊ बाप पत्नी पति सब चौकड़ी काट जाएंगे। जैसे यज्ञ के शुरू में हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जब बंटवारा हुआ खून की नदियां बही, तो किसी को यही ध्यान नहीं रहा कहां हमारी पत्नी है, कहां हमारे बच्चे हैं, कहां हमारा बाप है, जिसको जहां सर छुपाने को जगह मिली बाप खड़ा हुआ। लेकिन उस समय तो बाप प्रत्यक्ष नहीं था, प्रत्यक्षता बाप की नहीं हुई थी। और अब तो ऐसा समय आने वाला है, एक तरफ प्रत्यक्षता का नजारा और दूसरी तरफ विनाश का नजारा, तो उस टाइम सब के मुख से निकलेगा, क्योंकि दुख का समय होगा। कोई संबंधी लौकिक संबंधी किसी के नहीं रहेंगे, सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, एक परमात्मा बाप के सिवाय सबका एक ही सहारा होगा। तो जब दुख पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी उसी समय की यादगार में बोलते हैं हाय राम। अंत में जब अंतिम समय होता है तो कहते हैं राम नाम सत्य, बाकी बीच में दूसरे दूसरे नाम भी बोलते रहते हैं, अंत में सच्चाई का पता पड़ता है। सत्युग में तो ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है हाय राम। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख, इसलिए आए हो पढ़ने का एम ऑब्जेक्ट लेकर के आए हुए हो और साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ने के लिए आए हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो जो सिवाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। कब से 69 के बाद तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए बाप के सन्मुख, कोई देहधारियों के सन्मुख मुख के सामने नहीं आए हो, बाप के डायरेक्ट वचन से सुनते हो। कौन? तुम बच्चे। तुम किससे कहा जाएगा? सन्मुख बैठा होगा उसी से तुम कहा जाएगा। तो तुम बच्चे डायरेक्ट वर्षन सुनते हो, और जो मेरे बच्चे नहीं हैं वो डायरेक्ट वर्षन नहीं सुन सकते। मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना मुरली में बोला तो सत्युग में क्यों नहीं आ देगा? कौन से सत्युग में? कौन ने सोना कहा ना सत्युग में? साढ़े 14 कला सत्युग में नहीं, सत्युग माना सत्य ही सत्य है, 100% जहाँ सत्य है ऐसा सत्युग माना 84 जन्मों में से पहले जन्म का युग सत्ययुग, जिसमें असत्य का नाम निशान न हो। तो ऐसे बच्चे कितने जन्म लेने वाले होंगे? 84 ही जन्म लेने वाले होंगे। कम जन्म लेने वाले बच्चे मेरे सन्मुख आकर के पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी है पुष्करणी ब्राह्मण बन करके, किसी ने पुष्ट कर दिया धक्का लगा दिया और चल पड़े, तो ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। फिर भी सन्मुख से क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं। तो तुम बाप के बच्चे डायरेक्ट वचन से सुनते हो, इनडायरेक्ट ज्ञान बाप नहीं देते हैं क्या? बाप इनडायरेक्ट ज्ञान नहीं देते हैं? इनडायरेक्ट माने गुरुओं के थ्रू, और डायरेक्ट माने स्वयं बाप ज्ञान देने का निमित्त बने। ज्ञान तो डायरेक्ट ही मिलता है, बाकी जो कुछ भी इनडायरेक्ट मिलता है वो सब क्या हो जाता है? अज्ञान। इसलिए बोला एक बाप से ही सुनो, दूसरे किसी से अगर सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कुछ न कुछ अपनी मत मिक्स जरूर करेगा, एक दो अक्षर तो मिक्स कर ही देगा। तो ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, और डायरेक्ट ज्ञान देने के लिए बाप को आना पड़ता है, पड़ता है। मजबूरी है क्या? नहीं आओ तो नहीं चलेगा। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, कड़ुए कड़ुए बच्चों के पास नहीं आया हूँ। जो बच्चे बाप के सामने भी अगर कड़ुए बनते हैं तो आत्माभिमानी की स्टेज में रहने वाले हैं, पक्के आत्माभिमानी हैं या कच्चे हैं? जरूर कहेंगे कच्चे हैं। मुझे बुलाते हो, ओ बाप दादा, कैसे बुलाते हो? ओ बाप दादा, हाथ हाथ उठा करके किसको बुलाया जाता है? नहीं, हाँ अगर दूर है तो का क्या करे, जरा सन्मुख मुख घुमा ले, सन्मुख तो हो जाए। बाप भी रिस्पांड करते हैं, बच्चे कहते हैं ओ बाप दादा, और बाप कहते हैं ओ बच्चों, आप मुझे अच्छी रीति याद करो, है मुख घुमा घुमा के याद नहीं करो, कैसे याद करो? अच्छी रीति याद करो। भूलो नहीं, माया की विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको दे अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। जैसे रास्ता चलते चलते बच्चा कोई आकस्मिक घटना से दुखी होने लगे या कोई उसके ऊपर आक्रमण कर दे, बाप आगे आगे जा रहा है, तो क्या कह के बुलाएगा? ओ पिताजी, तो पिताजी क्या कहेंगे? सन्मुख होंगे ना, मुख घुमाएंगे कि नहीं? तो बाप कहते हैं बच्चे अब विमुख न हो, मेरे हमेशा सन्मुख रहो, खबरदार रहो, ये सच्चा सच्चा सत्संग है, ऊपर चढ़ने का है। सच्चा सत्संग में ना वो सब सत्संग आदि हैं उतराई के, और ये सत्संग है चढ़ाई का, ऊंची स्टेज में। बाकी कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जिस पर कोई चढ़ के बैठना है। सत्य का संग एक ही बार होता है और झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। कैसी स्टेज बन जाती है? पाना था तो पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया, दूसरा पेज। जिस अप्राप्त वस्तु, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, मना इच्छा मात्रम अविद्या। ये जो बाबा कहते हैं ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां तो ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहां जाते हो? अपने सुखधाम में, सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया, तो वो याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे। और कोई स्वर्ग में आता नहीं है सिवाय तुम्हारे। क्या इन बच्चों से बात कर रहे हैं? सन्मुख होने वाले बच्चों से बात कर रहे हैं, यानी पूरे जिन्होंने 84 जन्म लिए, क्योंकि 83 जन्म लेने वाले बच्चे भी बाप से सन्मुख होते होते फिर क्या हो जाता है, विमुख हो जाते हैं। तो जिसका अंत सुधरा उसका सब कुछ सुधरा। तो अंत में जो बच्चे बाप के सन्मुख साबित हो जाए वो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं। तो बताया पहले हम सुख में जाते हैं फिर दुख में जाते हैं, सिवाय तुम्हारे स्वर्ग में कोई आता नहीं है। असली स्वर्ग में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं आता है। तो तुम ही स्मरण करेंगे, स्मरण करेंगे किसको, सत्य बाप को, ट्रुथ गॉड फादर को। हम पहले सुख में जाते हैं, कलयुग में सुख दाम होता नहीं है, सुख मिलता ही नहीं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख कागज का समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने के लिए, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, ऐसे ही मूत पलीती को नहीं ले जाएंगे। कैसे के बना के ले जाएंगे, पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई को बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। तुम ऊपर नीचे भल होते हो, बीमार भल पड़ते हो लेकिन वापस नहीं लौटते। तो ये भी ऐसे है, ये है रूहानी यात्रा। अंतमति सुगति हो जाएगी, हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं। है बहुत सहज परंतु माया बुलाई देती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है, बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। तीन चार बातें मुख्य हैं जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही फिर आएंगे। गायन भी है राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम अध्यक्ष सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें तब मानेंगे। तो ये चित्र जो सामने रखा है वो साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है, इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है। बेहद के बाप का साक्षात्कार करना है तो बेहद के बाप का साक्षात्कार कर लो, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं है। तो किसका साक्षात्कार करने की बात आई, बेहद के बाप का साक्षात्कार कर लो। अगर उसको साक्षात पहचान लिया, साक्षात मन कहते ना, साक्षात सामने है तो और कोई साक्षात्कार करने की दरकार नहीं। अगर बेहद के बाप को पहचान लिया, बेहद के बाप भी दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप प्रजापिता। लेकिन दोनों की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों एक ही स्वरूप में न समा जाए। तो साक्षात माना सामने। अब आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु तो साक्षात सामने नहीं हो सकता, अकेला तो वो मनुष्य शक्ति का जो बेहद का पिता है उसमें प्रवेश करके सिर्फ बच्चों के सामने साक्षात होता है और बच्चे ही उसे पहचानते हैं। जो बच्चे नहीं बनते अर्थात परिपूर्ण आत्मा नहीं बनते, आत्म की स्टेज में पूरा नहीं टिकते, वो बाप को नहीं पहचान सकते। बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जिन्होंने पढ़ ली और उसमें पास हो गए, बेसिक नॉलेज है ही मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप बिंदु। अगर ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी बुद्धि में यही रह गया कि बाप का साकार स्वरूप ब्रह्म, तो फेल हो पड़ते। क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मा का प्यार लिया, गोद लिया, उनको ब्रह्मा जरूर याद आता है, और जिन्होंने साकार का पालन ही नहीं ली, गोद ही नहीं ली, और बाद में उनको ज्ञान मिला कि आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, तो उनको क्या याद आएगा? बिंदु ही याद आएगा। तो साकार स्वरूप को याद करने वालों की बुद्धि तीखी होगी या बिंदु को याद करने वालों की बुद्धि तीखी और सूक्ष्म होगी? बिंदु को याद करने से बुद्धि बिंदु बनेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि में बाप का सूक्ष्म स्वरूप सहज ही समझ आएगा। तो बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाप से मीठी और कोई चीज नहीं होती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है, हुए माई बेसिक नॉलेज में तो बताया, बेसिक नॉलेज के बतौर बताया मैं आत्मा बिंदु, वो तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब की आत्मा बिंदु, तो कोई विशेष नॉलेज नहीं हुई। आत्माएं आती है लेकिन मैं आत्मा इस सत्य रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पाठ बजाने वाली हूँ, कौन से जन्म विशेष में, कौन से धर्म विशेष में, कौन से देश विशेष में, ये पूरा पक्का पता पड़ गया। तो पूछा जिसे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है, कौन से बाप के बच्चे हो है? बापों का बाप कहा जाता है तो जरूर बाप भी तो नंबरवार हुए ना। ये सब धर्म पिताएं एक जैसे बाप हैं, कोई ऊंचे बाप और कोई नीचे, कोई श्रेष्ठ युग में आते हैं और कोई कनिष्ठ युग में आते हैं, कोई सतोप्रधान और कोई रजो प्रधान और कोई तमो प्रधान। तो पहले अपना साक्षात्कार किया है हम किस बाप के बच्चे हैं। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है ये तो तुम बच्चे जान गए, अब समझ मिल रही है हम आत्मा हैं, हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम आत्माएं आती है पाठ बजाने। ब्रह्मा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम जाते हैं, हम कहाँ आते हैं? पहले पहले सतयुग के आदि में आते हैं, ऐसे नहीं हमारा कोई मध्य में आने का पार्ट है, एकदम आदि में। आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं होता है। कलयुग में तो अनेक अनेक धर्म कुल आदि होते हैं, पर کیونکہ میں ایک ہی دن ایسی ہوگی. یہ تو سہج ہے نا, اس سمے تم سنگم بھی ایشوریہ پریوار کے ہو, تم نہ ستیوگی ہو نہ کلیوگی ہو. یہ بھی جانتے ہو کہ کلپ کلپ باپ آ کر ایسی پڑھائی پڑھاتے ہیں. یا تم بیٹھے ہو تو یہی اسمرتی میں آنا چاہیے, شانتی دھام اور سکھ دھام, اور یہ ہے دکھ دھام. اس دکھ دھام کا ویراگ اتوا سنیاس بدھی سے, وہ سنیاسی کوئی بدھی سے سنیاس نہیں کرتے ہیں, اور تم بدھی سے سنیاس کرتے ہیں. وہ تو اس اسکول میں گھر بار کو چھوڑ چلے جاتے ہیں, اور بدھی سے پھر اسی گھر گھاٹ کو یاد کرتے رہتے. تم کو تو باپ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ گھر بار چھوڑو. کیا نہ گھر گھاٹ چھوڑو اور نہ گھر والوں کو چھوڑو, مانا ہم باپ کے کیسے بچے ہیں. ہماری تو پکی پرتیجیا ہے ہم ایسے باپ کے بچے ہیں جس کو وردان ملا ہوا ہے. کیا وردان ملا ہوا ہے کہ وہ باپ جس آتما کو بھی چلائے گا اس کا پورا پریوار گیان میں چلے گا. گجرات کو وردان ملا ہوا ہے. کس کو؟ گجرات, جس کی رات اجیان کی گزر گئی وہ گجراتی ہے. تو اس کو وردان ملا ہوا ہے کیا کہ پورا پریوار کا پریوار گیان میں چلے گا ضرور. تو ایسا بدھی میں کبھی نہ آئے سنیاسیوں کی معافی کہ ہم کو گھر بار اور گھر واروں کو چھوڑ دینا ہے. نہ گھر بار چھوڑنا ہے اور نہ گھر والوں کو چھوڑنا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے بھارت کی سیوا تو کرنی ہی ہے. ایسے نہیں کہ گھر بار کو نہیں چھوڑنا ہے, بابا نہیں تو کہا ہے. تو ہم نہ کرگڑتے رہے ہر سمے وہیں تو نہیں. گھر بار کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن گھر بار بھی کہاں رہتا ہے؟ بھارت واسیوں کا گھر بار تو بھارت میں ہی ہوگا. تو بھارت کی سیوا کرنی ہے. بھارت میں ہی بھگوان آتے ہیں. بھارت دیش وشیش کو بھی کہا جاتا ہے, اور بھارت شبد ویکتی وشیش کے لیے بھی اپیوگ ہوا. بھارت ماتا کہا جاتا ہے, تو ماتا کوئی ودھوا تو نہیں ہوگی. ماتا کے ساتھ پتا بھی ہوگا. تو اتنا ضرور ہے بھارت کی سیوا کرنی ہے اتوا اپنی سیوا کرنی ہے. سیوا تو گھر میں بھی کر سکتے ہو. کیا کہا؟ ایسے نہیں کہ سیوا باہر ہی کی جا سکتی ہے, سیوا گھر میں بھی کر سکتے ہو. پہلے گھر کا سدھار, پھر پر کا سدھار. اچھا اب ہم براہمنوں کے لیے تو اتنی بڑی دنیا کے اندر اپنا ہی چھوٹا سا سنسار ہو گیا. وہی ہمارا پریوار ہے. جو براہمن روحانی اسٹیج میں ٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنا پریوار کون سا ہوا ہے؟ روحانی بچوں کا اپنا پریوار کون سا ہوا؟ روحانی پریوار پہلے اپنا ہوا, کیونکہ روح پہلے ہے اور جسم بعد میں. तो जिस्मानी बाप और रूहानी बाप, परिवार भी यहां दो हो गए। रूहानियत का परिवार सुप्रीम सोल रूह के सन्मुख बैठने वाले बच्चों का परिवार, और दूसरे जिस्मानी बाप और उसके सन्मुख बैठने वालों का परिवार। तो प्रेफरेंस किसको देना पड़े? रूह को प्रेफरेंस देना पड़े या जिस्म को प्रेफरेंस देना पड़े? पहले रूह को। तो जिस्मानी घर परिवार को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस रूहानी परिवार को पहले देना। तो हम जानते हैं तो रूहानी बाप के रूहानी फर्स्ट क्लास बच्चे कितने हैं? मैं वो फर्स्ट क्लास वाला है 108 जो राजा बन करके दिखाते हैं। पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, फिर विश्व पर कंट्रोल करके दिखाते हैं। तो वो परिवार उसकी पहले सेवा करनी है। वो परिवार को पहले संगठित करना है। तो सेवा तो घर में भी कर सकते हो, इसके लिए बाहर कहीं भागने की दरकार नहीं है। पढ़ने के लिए आना जरूर है। फिर होशियार होकर के औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गैन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी के भी थोड़ी रही। तो ये किस समय का गैन है? 50-55 साल पहले का गैन है, मर्दी का गैन है, या अब अंतिम समय का गैन है? बहुत गई थोड़ी गई थोड़ी की भी थोड़ी रही। जरूर अंत समय का गायन। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में हैं। समझते हैं जो 40,000 वर्ष पड़े, खूब कंक्रीट की अंडरग्राउंड महल मारियां बना के तैयार कर लो। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है, हद में टिकने की बात नहीं। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये सब लूड है, जू मिशन ड्रामा चल रहा है। जू कैसे चलता है? बहुत धीमी चाल से। तो ये ड्रामा की चाल भी बहुत धीमी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी, वो ही आकर के पढ़ेंगे जो सत्युग में जाने वाले होंगे। बाप के सामने वो ही आकर के पढ़ेंगे, दूसरे कोई आकर के पढ़ने वाले नहीं होंगे। अनेक बात तुमने पढ़ा है, अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर, न मनमत पर और न मनुष्यों की मत पर। ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में है। कल पहले भी आए थे, तुम कहेंगे कल कल पैसा बाप आते हैं। कैसा बाप? जो ऊंचे ऊंचे हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में साफ बैठता जाता है। क्या विनाश भी तुम देखते हो का मतलब सिर्फ साक्षात्कार करते हो क्या बदनाकों का? विनाश भी देखते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम बच्चे इन आंखों से विनाश देखते हो और जो दूसरे हैं वो इन आंखों से विनाश नहीं देखेंगे। तुम जो बच्चे सन्मुख आकर के सुनते हो, सन्मुख बाप से पढ़ाई पढ़ करके डायरेक्ट वर्षा लेते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। ये स्थापना बिना और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है कि कैसे कैसे स्थापना होती है, कैसे कैसे पालना और विनाश होता है, क्या क्रम है स्थापना पालना और विनाश का। पहले क्या, पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। ऐसे नहीं कि तीन चित्र बने हुए हैं तो उसको उसी क्रम से समझा देना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये रंग हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उसके बाद शंकर द्वारा विनाश, किसका किसकी स्थापना और किसका विनाश। ब्रह्मा द्वारा पहले क्या होता है, ब्राह्मणों की स्थापना या पहले देवता धर्म की स्थापना। पहले ब्राह्मण धर्म, फिर देवता धर्म, फिर क्षत्रिय। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो फेलियर हो जाते हैं, कम कला वाले बन जाते हैं, वो सब हो गए चंद्रवंशी। तो पहले पहले किसकी स्थापना, पहले पहले देवता धर्म की स्थापना, बाद में ब्राह्मण धर्म की स्थापना। पहले पहले ब्राह्मण बनना पड़े तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, तो वो हुई या नहीं हुई है। पहले ब्राह्मण बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक राजयोग के द्वारा राजा ही कुल में नहीं आ सकते, राजा नहीं बन सकते। पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले ब्राह्मण निकलते हैं सिर्फ कितने, 16,108, जो परमात्मा बाप से राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके राजकुल में आते। ये है राजाई की फैमिली। तो पहले स्थापना फिर बिना, पहले किसकी स्थापना, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की स्थापना। और जब ब्राह्मणों की संगमी भी नई दुनिया की स्थापना हो जाती है तो पुराण खंडी ब्राह्मणों का बिना, उनका नाम क्या दे दिया पुराने ब्राह्मणों का, जरा सिंधे, जरा मन पुराने, जरा जीर्ण, पुरानी मान्यताओं पर चलने वाले, उनका विनाश। और नए ब्राह्मण संगठन की स्थापना, फिर क्या होगा, फिर जिसकी स्थापना हुई उसकी पालना भी होती है। तो पहले स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया की, फिर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कचरा ब्राह्मणों का, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ भी क्या थे, ब्राह्मण थे। तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का बिना, उनके ताजिया ठंडे होते हैं। और फिर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ज्ञानी तू आत्मा है, मुखवंशावली बच्चे, ब्रह्मा की कोख को, गोद को याद करने वाले नहीं, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकले हुए जो परमात्मा बाप शिव के वर्षांश हैं, उन वर्षांश को याद करने वाले बच्चे, मुखवंशावली, उनकी स्थापना और फिर पालना, बाकी सबका विनाश हो जाता है। तो कैसे स्थापना पालना विनाश होती है ये तुम जानते हो, वो इस बात के राज को नहीं जानते। बल बाबा ने मुरली में घोषणा करवाई दी सन 66 में, 10 साल पहले, कि 10 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। मुरलियों में भी ये बात बोल दी गई, ज्ञानामृत पत्रिका में भी ये बात छपाई दी गई, सरकार को भी नॉर्मल मेमोरेंडम दिलवाई दिया गया। लेकिन जिन्होंने मेमोरेंडम दिया, जिन्होंने ज्ञानामृत पत्रिका में छापा और जिन्होंने कागज की मुरलियों में छापा, कागज के पत्तों में, उनकी बुद्धि में इसका रहस्य नहीं बैठ सका कि कैसे स्थापना, कैसे पालना और कैसे विनाश होता है। लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहस्य बैठ जाता है। तो जो तुम बच्चों की बुद्धि में रहस्य बैठता है वो फिर औरों को समझाने आगे तो ये बातें नहीं जानते थे। आगे माना कब, कैसे स्थापना पालना और विनाश के रहस्य को कब नहीं जानते थे? आगे माना पहले कब नहीं जानते थे? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले तो इन बातों को नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। पहली शर्त क्या है? सब कुछ जानना या बाप को जानना? बाप द्वारा बाप को जानने से, किसी भी देहधारी धर्मगुरु के द्वारा नहीं। ये भी नहीं कहा कि ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा? बाप द्वारा। मीडिया भी कौन? सेम बाप। इसलिए ये भी बता दिया मुरली कि मेरा परिचय मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। बाप खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप का परिचय बाप के अलावा और कोई दे नहीं सकता। तो बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हैं। वर्ल्ड की स्थिति ज्योग्राफी यथार्थ से तुम जानते हो क्या? यथार्थ रीति तुम जानते हो। और जो जानने वाले हैं, 83 जन्म लेने वाले, 82 या कम जन्म लेने वाले ब्राह्मण, वो यथार्थ रीति नहीं जानते क्योंकि वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं वो स्थिति तुम जानते हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं वो भी तुम जानते हो, और तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हैं वो भी तुम जानते हो। कैसे बनते हैं? कैसे का जवाब मिल गया? मिल तो गया क्या है? कैसे का जवाब दो। बाप मिला वो तो ठीक, ठीक है। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो ये बाप तुमको समझाए रहे कि द्वापर युग से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पावरफुल आत्माएं आई और उनके संग के रंग में जो रंग गए वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। तो ये संस्कार कहां भरे? संग में। ये संगमयुग में जो ब्राह्मण है वो नवपुरी के ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की नवपुरियां मानी जाती, नौ ही विशेष धर्म है, नास्तिक धर्म को छोड़ करके, कम्युनिज्म को छोड़ करके, जो परमात्मा बाप से राजाई की प्राप्ति करते हैं राजयोग से। तो नौ विशेष धर्मों के जो मूल है, बीज है, बीज आत्मा आधारभूत आत्मा, वो बाप से प्राप्ति करने वाली नंबरवार पुरुषार्थ संसार। तो तुमको फिर ये बातें औरों को भी समझानी, क्योंकि सभी बुद्धिहीन पत्थर बुद्धि है, तुम अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में तो होते ही है पारस बुद्धि, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको ही गीता का एपिसोड कहा जाता है। किसका युग? पुराण का युग नहीं, बाइबल युग नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का युग नहीं, कौन सा युग? गीता का एपिसोड, गीता युग। इस युग में तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। अब गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, गीता भी स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं करती, गीता को भी प्रत्यक्ष करने वाला कौन? स्वयं भगवान। गीता माता को भी कोई पहचान नहीं सकता जब तक भगवान खुद आकर के अपना परिचय न देवे। गीता रचना है या रचयिता है? गीता भी गीता माता है तो जरूर कोई बाप भी है। गीता माता बाप की रचना है। तो गीता मनुष्य नहीं सुनाते, माता के रोम रोम को जानने वाला बाप होता है, बच्चे नहीं। तो मनुष्यों का बाप कौन हुआ? सब मनुष्य मात्र का बाप प्रजापिता। उसके थ्रू सुनाने वाला कौन हुआ? गीता का भगवान। तीसरा पेज, तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो, इनको कहा जाता है रूहानी नाले। जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी जलाशी स्थापन करते हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं आके और पढ़ाई पढ़ा के वापस चले जाते हैं, फिर देहधारी धर्म गुरु सूर्यवंशी चंद्रवंशी जलाशी स्थापन करते रहेंगे। नहीं, बाबा आकर के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों वंश की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। डायनेस्टी माने राजाओं की वंश परंपरा। तो उन देहधारी धर्मगुरुओं द्वारा कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हुई कि क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सूर्यवंशी किसे कहा जाता है और चंद्रवंशी किसे कहा जाता है। अरे जब रघुवंश कहा जाता है तो रघु नाम का कोई राजा हुआ ना, जो वंश चलता है उस वंश को चलाने वाला पहला तो कोई होगा। तो सूर्यवंश का पहला कौन हुआ? जरूर सूर्य हुआ। और चंद्रवंश का पहला चंद्रमा हुआ। तो अपने ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य कौन और ज्ञान चंद्रमा कौन? कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। तो जरूर कोई देवता हुए ना। ज्ञान सूर्य तो है, परमात्मा शिव, लेकिन वो भी किसी स्वरूप से प्रत्यक्ष होगा ना। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट होगा प्रैक्टिकल, वो किससे ज्ञान लेगा? प्रगति करके ज्ञान लेगा। जो ज्ञान सूर्य का पार्ट होगा वो किसी से ज्ञान लेने वाला पार्टधारी नहीं होगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। बड़े बड़े धुरंधर जो है, ऋषि मुनि सन्यासी पुराने पुराने, वो भी कह देंगे हम तुमको नहीं समझा सकते। अरे उसको तो छोड़ो, उस ज्ञान सूर्य के बच्चों से ही घबरा जाएंगे, उसको भी नहीं समझा सकते। सूर्य को कौन समझाएगा? सूर्य तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य से सारी दुनिया प्रकाश लेती है, सूर्य से चंद्रमा भी प्रकाश लेता है। ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने भी प्रकाश किससे लिया? कब लिया? यज्ञ के आदि में। तो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी देना स्थापन करते हैं, ये कार्य अभी हुआ नहीं है। कितने वर्ष हो गए? 50-55 वर्ष हो गए, ये कार्य अभी हुआ नहीं है, क्योंकि टाइम पूरा नहीं हुआ। पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए कितना टाइम बताया? 7 साल। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों के द्वारा। अभी तक कहते थे ब्रह्मा द्वारा, और अब क्या कह दिया? ब्राह्मण मुखवं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। ये दो दो बातें क्यों कर दी? या तो कहें ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, या तो कहें कि ब्रह्मा के जो वंशावली है उन ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावलियों के द्वारा स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? कोई अंतर नहीं, ब्रह्मा भी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ही कार्य करता है, और ज्ञान सूर्य भी उसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा कार्य करता है। इसलिए बात एक ही, बात श्रीमत देते, ये समझने की बात है, दिल पर लोड करना है। ये बात तो बहुत सहज है समझना, ये है दुखधाम। कोई कोई समझे बैठे हैं कि हमको ब्रह्मा बाप से वर्षा मिल गया, मैलमारियों अटारियों का, बड़े बड़े म्यूजियम का, बड़े बड़े सेंटरों का बाबा हमको जोनल इंचार्ज बनाई गए, ये राजा ही हमको मिल गई। लेकिन ये दुखधाम है, ये कोई दुखधाम नहीं है जिसका बाप ने वर्षा दे दिया। ये उनकी गलत फहमी है, ये उस दुनिया में समझते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए, बाकी सब नरक की दुनिया में मर मिटेंगे। ये बातें दिल पर नोट करनी है। अभी हमको घर जाना है कलयुग के बाद सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है, बल तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है, दिल शिकस्त होने की बात नहीं है। तो हम तो अबलाएं माताएं, हमने तो पढ़ाई पढ़ी नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। किनसे? शिव बाबा जो सब आत्माओं का बाप है, पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। क्या था? वर्षा कब मिलेगा? निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, निश्चय नहीं करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा। अंदर में भी अजप अजप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, हद के सुख है। महलमारियों अटारियों का वर्षा नहीं, 36 प्रकार के भोगों का वर्षा नहीं मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? बेहद के स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलता है। हद का स्वर्ग क्या होता है और बेहद का स्वर्ग क्या होता है? हद का स्वर्ग माना है, हद की सुखी की दुनिया माना सत्युग के जो भी 20 जन्म है सत्युग त्रेता के, वो सब है हद के। और बेहद स्वर्ग का सुख का वर्षा है 21वां जन्म, जो उनको ही मिलता है जो अंत मरते तो गति को प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ गति को। यानी उनकी बुद्धि ही कैसी बन जाती है कि इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करते। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं बाप के बन जाते हैं, बाप के तन्मुख रहे पड़े हैं और फिर भी आंसू आंसू बहाते रहते। अपने मन को मोल्ड करने की जो बेहद की प्राप्ति है वो नहीं कर सकती। तो बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, वो मिल रहा है। इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है